दिन भर तारीख 30 जून दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहर आत्मघाती हमला, 30 मौतें, तालिबान ने ली जिम्मेदारी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में दिए गए दर्जे के अपने पुराने फैसले को वो नहीं बदलेगा।
नाराजगी इस बात की थी सुप्रीम कोर्ट की कि जो अप्रैल 2014 में हमने ऑर्डर दिया था उसको लागू करने की बजाय आप एप्लीकेशन लगाए जा रहे हो क्लेरिफिकेशन की, जिसमें क्लेरिफिकेशन कोई आवश्यकता ही नहीं है।
कार्यक्रम में होगी आपकी राय, साथ ही अन्य खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास दो आत्मघाती हमलावरों ने एक पुलिस काफिले पर हमला किया, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर पुलिस कैडेट हैं जो शुरुआती ट्रेनिंग के बाद वापस आ रहे थे। आशंका है कि मरने वालों की तादाद अभी बढ़ सकती है। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पिछले हफ्ते ही तालिबान ने काबुल में एक मिनी बस पर हमला किया था, जिसमें 14 नेपाली सुरक्षा गार्डों की मौत हो गई थी। पश्चिमी तट पर यहूदी बस्ती में एक इजरायली लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। 13 साल की हालेल याफा एरियल पर तब हमला हुआ जब वो किरियत अरबा के अपने घर में बेडरूम में थी। हमलावर को रोकने की कोशिश में एक सुरक्षा गार्ड भी जख्मी हो गया, हालांकि दूसरे गार्डों ने उसे गोली मार दी। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमलावर की पहचान 19 साल के मोहम्मद तारायरे के रूप में की है। डिप्टी मेयर इसराइल अजुले ने बताया, एक चरमपंथी ने घुसपैठ की, उसे हत्यारा भी कह सकते हैं। उसका इकलौता मकसद यहाँ के लोगों को चोट पहुँचाना था और उसने ये कर दिया। वो बाढ़ के दूसरी तरफ से आया था, उसने बाढ़ को पार किया और यहूदी हाई स्कूल की तरफ मुड़ गया। हम खुशकिस्मत रहे कि छात्र छुट्टी पर थे, इसलिए वो घरों की तरफ मुड़ा और 13 साल की एक लड़की को चाकू मार दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक पीड़ित लड़की के शरीर के ऊपरी हिस्से पर कई बार चाकू से वार किया गया। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव में सबसे प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे बोरिस जॉनसन ने खुद को इस दौड़ से अलग कर लिया है। बोरिस जॉनसन ने लंदन में दिए अपने भाषण में कहा कि इस वक्त जिस तरह के नेता और एकता की जरूरत देश को है वो उसे दे सकेंगे, उन्हें ये भरोसा नहीं है। इससे पहले बोरिस जॉनसन के साथ ही माइकल गोव ने इस दौड़ में शामिल होने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। विश्व बैंक ने भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक करार पर दस्तखत किया है। करार के तहत विकासशील देशों में सौर ऊर्जा के विकास के लिए अगले 1.5 दशक में खरबों डॉलर खर्च किए जाएंगे। केवल भारत में ही सौर ऊर्जा के विस्तार पर 1 अरब डॉलर खर्च होंगे और सौर ऊर्जा पर वर्ल्ड बैंक ने पहली बार इतने बड़े निवेश की योजना बनाई है। भारत ने जमीन से आकाश में मार करने वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मध्यम दूरी की इस मिसाइल को भारत और इसराइल ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सुबह 8:15 बजे से प्रक्षेपित किया गया। इसराइल मिसाइल के अलावा इस परीक्षण में एक निगरानी तंत्र भी शामिल है जो मिसाइलों पर निगाह रखने के साथ ही उन्हें निर्देशित भी करेगा। राजस्थान महिला आयोग की सदस्य सौम्या गुर्जर ने इस्तीफा दे दिया है। एक बलात्कार पीड़ित के साथ सेल्फी खिंचवाने को लेकर उनकी आलोचना हो रही थी। सौम्या गुर्जर का कहना है कि वो पीड़ित महिला के पास सिर्फ सहानुभूति जताने गई थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी भी समाचारों में आपने सुना, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहर आत्मघाती हमलावरों ने एक पुलिस दल पर हमला किया, जिसमें 30 कैडेट्स और कुछ लोग भी मारे गए हैं। हमला काबुल के ठीक बाहर पुलिस अकादमी की बसों पर हुआ। ये पुलिस दल वारदाक प्रांत से काबुल की ओर जा रहा था। एक प्रत्यक्षदर्शी मीर हुसैन ने कहा, मीर हुसैन कह रहे थे बहुत बड़ा धमाका था। हम घटनास्थल पर गए और हमने देखा लगभग 20 से 30 पुलिस वाले धमाके का निशाना बन चुके हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी की आंखों देखी। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। इस घटना से हफ्ते भर पहले भी एक बस पर हमला किया गया था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। हमले की और जानकारी के लिए मैंने बात की काबुल में बीबीसी पश्तो सेवा के संवाददाता सईद अनवर से।
ये हमला आज काबुल के जिला पगमान के करीब वाकई हुआ है। दोपहर के वक्त ये हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस की 3 बसें अफगान पुलिस कैडेट्स को सुबह मैदान वर्दक से काबुल ला रहा था कि 2 खुदकुश हमलावरों ने इन बसों के दरमियान खुद को उड़ा दिया है। जो इत्तला हुकाम की जानिब से अभी तक जारी की गई है, इस हमले में 30 से ज्यादा कैडेट्स मारे गए हैं और 50 के करीब जख्मी हैं, और जो आम शहरी सड़क के करीब थे 3 आम शहरी भी इस हादसे में मारे गए हैं और 2-3-4 अफराद तक जख्मी है। तो ये इस रमजान के महीने में एक बहुत बड़ा हादसा है जो मजमू तौर पर 30 से ज्यादा पुलिस कैडेट्स मारे जाते हैं और 50-60 के करीब जख्मी हैं।
आमतौर पर ये देखा गया है कि इस तरह के हमले जो हैं वो रमजान के महीने में नहीं होते हैं, तो इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली है?
तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और तालिबान ने उन अफराद का नाम भी जारी किया है जिन्होंने ये खुदकुश हमला किया है। तो तालिबान ने आके रस्मी तौर पर ये हमला कबूल किया है और उन्होंने कहा है कि इस हमले में 100 के करीब अफगान पुलिस और ऑफिसर्स मारे गए हैं और जख्मी हैं। तो दूसरी जानब अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और उन्होंने इस हमले को रमजान के महीने में इंसानियत और इस्लामियत के खिलाफ एक काम करार दिया है।
ये थे बीबीसी पश्तो सेवा के संवाददाता सईद अनवर, जो कि बता रहे थे कि किस तरह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहर आत्मघाती हमलावरों ने पुलिस दल पर हमला किया जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर। रुख भारत का करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 के ट्रांसजेंडरों यानी कि किन्नरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दिए जाने के अपने फैसले को बदलने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि उनका आदेश पहले से ही एकदम स्पष्ट रहा है और उसमें सफाई मांगने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इस मामले में क्या कुछ हुआ, सुनिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने अपना तर्क दिया। उनके मुताबिक अप्रैल 2014 में कोर्ट के उस फैसले में इस बात को लेकर ज्यादा सफाई की जरूरत है कि क्या समलैंगिक और बाइसेक्सुअल लोग ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों की श्रेणी में आते हैं। उधर किन्नरों के हित में काम करने वाले कुछ संस्थानों की तरफ से वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर अदालत में मौजूद थे और उन्होंने दलील ये रखी कि केंद्र सरकार 2014 के फैसलों को पूरी तरह से अमल में नहीं ला रही है और मामला टल रहा है। आखिर में जस्टिस ए.के. सीकरी और एन.वी. रमना ने इस बात पर थोड़ी नाराजगी भरे अंदाज में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में सरकार को दोबारा अर्जी देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सूरत सिंह ने इस नाराजगी की वजह बताई।
सरकार को उन्होंने बताया कि आप चीज को क्यों अननेसेसरी ड्रैग कर रहे हो, इसको लागू करो। तो सरकार पर नाराजगी इस बात की थी सुप्रीम कोर्ट की कि भाई जो अप्रैल 2014 में हमने ऑर्डर दिया था उसको लागू करने की बजाय आप एप्लीकेशन लगाए जा रहे हो क्लैरिफिकेशन की, जिसमें क्लैरिफिकेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ट्रांसजेंडर का जो राइट बनता है उसको आप दीजिए।
गौरतलब है कि 2014 में अपने फैसला सुनाते समय अदालत ने कहा था कि किन्नर इस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी शिक्षा, काम पाने और समाज में बराबरी का पूरा हक है। बहरहाल अदालत से एक बार फिर अपने हक में मिली सफाई के बाद किन्नर समुदाय में खुशी तो है लेकिन एक चीज की उम्मीद भी। सुनिए बैंगलोर स्थित एक किन्नर कार्यकर्ता अक्काई पद्मशाली को।
ये ट्रांसजेंडर समुदाय ने बैकवर्ड क्लास स्टेटस कैटेगरी में लिया को हाई ना ओबीसी कैटेगरी को, वो अच्छी तरीके से जजमेंट है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड इट, बट स्टिल हमारी तरफ से खेद क्या है, वो 377 ट्रांसजेंडर समुदाय को भी अफेक्ट होती।
यानी गुरुवार को अदालत से मिली सफाई के बावजूद किन्नर समुदाय के अलावा समलैंगिकों को भी इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से शिकायत है और वे उसके खात्मे की बात करते हैं। आइए वकील सूरत सिंह से जानते हैं इसके पीछे की वजह।
एक बड़ी अजीब स्थिति हो गई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि 377 इंडियन पीनल कोड में नेचर के अगेंस्ट अगर कोई काम करता है यानी होमोसेक्सुअलिटी या लेस्बियन तो उसको या एनिमल्स के साथ करता है सेक्स तो उसको वो जो है अपराध माना जाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर कंसल्टिंग अडल्ट हैं अडल्ट और कंसल्टिंग है तो इसमें नहीं आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 377 को जो है हम स्टैट्यूट की बुक पे तो रखेंगे, यहाँ से हटाएंगे नहीं।
सुप्रीम कोर्ट से पहले भारत के चुनाव आयोग ने 2014 लोकसभा चुनावों में किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया था, जिसे पूरी तरह अमल करने की चुनौती अब केंद्र सरकार की है, क्योंकि अब दोबारा अदालत जाने की गुंजाइश भी खत्म सी हो चुकी है। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
तो जैसा कि आपने सुना, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ट्रांसजेंडरों यानी किन्नरों को जो तीसरे लिंग के रूप में दर्जा दिया था, उस फैसले को बरकरार रखा है। रुख छत्तीसगढ़ का करते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित बालको चिमनी हादसा मामले में कोरबा की श्रम अदालत ने वेदांता बालको के तत्कालीन CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी और चीन की कंपनी शेंडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के चेयरमैन के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया है। कोरबा में 23 सितंबर 2009 को हुए इस हादसे में बालको के पावर प्लांट की 248 मीटर ऊंची निर्माणाधीन चिमनी गिर गई थी, जिसमें दबकर वहां काम करने वाले 40 मजदूर मारे गए थे। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बालको चिमनी हादसे मामले में कोरबा के श्रम न्यायालय ने बालको के तत्कालीन CEO गुंजन गुप्ता और चीन की कंपनी शेंडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के चेयरमैन हाओ जुओजीन के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालांकि श्रम न्यायालय ने अपने आदेश में कारखाना अधिनियम के तहत मामले को चलने लायक नहीं बताते हुए अन्य 8 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है, लेकिन 40 मजदूरों की मौत के मामले में बालको के पूर्व CEO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की खबर के बाद बालको प्रबंधन प्रतिक्रिया से बचता रहा। बालको वेदांता के संवाद प्रमुख BK श्रीवास्तव ने आदेश की पुष्टि नहीं होने का हवाला दिया।
पहले हम लोग को पता नहीं था, अभी इसके बारे में थोड़ा सा जो कंसर्न लोग हैं वो पता लगाने गए हैं, तो लेकिन हम लोग को आइडिया नहीं, आज पहली बार जो है ना ऐसा देखा, अब वो कुछ पता लगा पाते नहीं लगा पाते, देखता हूँ मैं जो जाते हम लोग ऐसा कर पाएंगे पता नहीं।
लेकिन बालको और भारतीय ठेका कंपनी GDCL की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अशोक तिवारी ने कहा कि राज्य शासन की ओर से सहायक कारखाना निरीक्षक ने यह मामला श्रम न्यायालय में दायर किया था, जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।
कि जो कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है उसके खिलाफ स्थायी रूप से उसको अनुपस्थित मान्य करते हुए उसे स्थायी गिरफ्तारी वारंट भेज दिया जाता है। जब भी वो उपस्थित होंगे तब उनके खिलाफ विचारण होगा। मैं उसे गुंजन गुप्ता और एक कोई और थे ऐसा, तो पुलिस उस वारंट के तहत उनको अगर गिरफ्तार करके पेश करेगी या उनको वारंट की पतासाजी होती है तो स्वस्फूर्त उस पर उपस्थित होकर के जमानत करा करके मुकदमे का वो ट्रायल करा सकते हैं।
पुलिस ने इस मामले में बालको वेदांता, चीन की ठेका कंपनी शेंडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन और भारतीय ठेका कंपनी GDCL के अधिकारियों के खिलाफ पहले ही रिपोर्ट दर्ज कर रखी है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संदीप बख्शी न्यायिक आयोग ने भी इन सभी कंपनियों के अधिकारियों को ही चिमनी हादसे के लिए दोषी मानते हुए अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही कारण है कि अदालत के ताज़ा फैसले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं में कोई खास उत्साह नहीं है। बालको मामले में लगातार सक्रिय फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण पटेल का कहना है कि सरकार वेदांता एस्ट्रोलाइट की बालको कंपनी को बचाने का काम कर रही है।
सरकार बालको को बचाने का काम करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा करके रखा, उसके ऊपर चिमनी बनाई, अवैध तरीके से निर्माण किया, नगर निगम ने उनको दो दो तीन तीन बार नोटिस दी, उसको भी उन्होंने परवाह नहीं किया। इतनी बड़ी लापरवाही चीज होने के बावजूद सरकार आंख बंद करके बैठी रहे, और इसको हम सरकार का उनको संरक्षण न कहे तो और क्या कहेंगे। ये दोनों की मिली भगत है, सरकार इनको बचाने का काम करती है।
प्रवीण पटेल के आरोप नए नहीं है और राज्य की भाजपा सरकार द्वारा वेदांता बालको को गैरकानूनी तरीके से लाभ पहुंचाने के कई मामले पहले भी सार्वजनिक हो चुके हैं। ऐसे में ताजा अदालती फैसले पर राज्य सरकार क्या रुख अख्तियार करती है, इस पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख उत्तर प्रदेश का करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बहुजन समाज पार्टी को एक और झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले पार्टी छोड़ चुके हैं, अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले RK चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और RK चौधरी बहुजन समाज पार्टी में महासचिव थे, सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं अपने सहयोगी समीर आत्मज मिश्र को। समीर आत्मज मिश्र, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों को बताया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। चौधरी ने क्यों इस्तीफा दिया, क्या बातें कही उन्होंने?
मोहनलाल जी, इस्तीफा देने के पीछे तो आर के चौधरी का तो ये कहना है, जिस तरह के स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाए थे, सीधे तौर पर उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मायावती पे आरोप लगाया कि वो टिकट बेचती हैं, पैसे वालों का बोलबाला है और पैसा कमाने में लगी है। और बहुजन समाज पार्टी में सामान्यतया जो भी नेता पार्टी छोड़ते हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अपनी पसंदीदा विधानसभा सीट से आर के चौधरी टिकट चाह रहे थे और शायद उसके लिए पार्टी ने हामी नहीं भरी या उनको मना कर दिया गया। मोहन लालगंज विधानसभा सीट लखनऊ से लगी हुई है, वहीं से ये चाहते थे और इससे पहले उसी लोकसभा सीट से, मोहनलालगंज लोकसभा सीट से ये 2014 का चुनाव हार चुके हैं, इस वजह से पार्टी ने इनको शायद टिकट नहीं दिया। और पार्टी छोड़ने की जो तात्कालिक और मुख्य वजह बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है। हालांकि आर के चौधरी की जहां तक बात है तो ये पहले भी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं,
कांशीराम के साथ इन्होंने काम किया है काफी,
जी बहुत, उनके बड़े निकट सहयोगी रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी और बसपा की जो गठबंधन सरकार पहली बार बनी थी उसमें बड़े महत्वपूर्ण अहदे पर थे ये, इनको परिवहन मंत्रालय दिया गया था, परिवहन मंत्री थे, लेकिन पार्टी से बड़ी जल्दी इनका नाता टूट गया। 2001 में पार्टी ने इनको निकाल दिया था और तकरीबन 12 साल के बाद 2013 में इनकी पार्टी में वापसी हुई। इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, और जब बहुजन समाज पार्टी में 2013 में शामिल हुए तो उस पार्टी का विलय भी कर लिया गया बहुजन समाज पार्टी में।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, साल भर हैं, और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने वही आरोप लगाया और इसी तरह से आर के चौधरी ने भी वही आरोप लगाया, तो क्या असंतोष का जो सुर है वो बहुजन समाज पार्टी में कुछ ज़्यादा दिख रहा है?
ठीक कहा आपने, वैसे असंतोष के सुर और जगह भी दिख रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में चूंकि बड़े दो नेता पार्टी से अलग हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये बड़ा एक माना जा रहा है कि झटका बड़ा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से नेता निकलते हैं तो नेता कमजोर होते हैं, पार्टी वहीं की वहीं रहती है, ऐसा देखने में भी आया है। खुद आर के चौधरी जब निकले थे उस समय भी एक बड़े नेता थे पार्टी के, और चूंकि दलित समुदाय से ही आते हैं और बहुजन समाज पार्टी का दलित समुदाय में ही सबसे ज्यादा एक कहते हैं कि उसकी पकड़ है, बावजूद इसके पार्टी पे कोई उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और आर के चौधरी अपनी पार्टी बना भी पाए तो खुद केवल जीत लिया करते थे, यही एक बड़ी उपलब्धि रहा करती थी। और इन्होंने अपनी पार्टी को कोई बहुत पहचान दिलाने में खुद भी असमर्थ रहे, तो झटका तो है लेकिन अब वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि उसको प्रचारित या प्रसारित किया जा रहा है।
जी समीर आत्मज मिश्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बहुजन समाज पार्टी से एक और नेता का इस्तीफा, आर के चौधरी ने इस्तीफा दिया।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करते हैं। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की कमान संभालने और प्रधानमंत्री बनने को लेकर छिड़ी जंग में एक नाटकीय मोड़ आ गया है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ देने के लिए अभियान चलाने वालों में से एक प्रमुख नेता बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं पोलैंड ने मांग की है कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग होने से रोक पाने में असफल रहने के कारण यूरोपीय संघ के कुछ पदाधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
पोलैंड ने मांग की है कि यूरोपीय संघ के पदाधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वे ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग होने से रोक पाने में असफल रहे हैं। पोलैंड के विदेश मंत्री विटोल्ड वेसिकोवस्की ने वॉर्सो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूरोपीय संघ के कुछ पदाधिकारियों को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से सीख लेते हुए ब्रेग्जिट के लिए आरोपों को स्वीकार करना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकल जाना।
ब्रिटेन के पदाधिकारियों ने ब्रेग्जिट की वजह से अपना इस्तीफा दे दिया और जैसा मैंने कहा कि हम लोग यूरोपीय संघ के पदाधिकारियों में से कुछ पर आरोप लगाते हैं, कुछ विचार मंथन होना चाहिए और कम से कम ईयू के कुछ पदाधिकारियों को इसके परिणाम भुगतने चाहिए, उन्हें रास्ता साफ कर देना चाहिए ताकि कुछ नए नेता, नए विशेषज्ञ वार्ता के लिए आगे आए जो इन गलतियों और ब्रेग्जिट की हार के बोझ तले नहीं दबे हैं ताकि वे ब्रिटेन और यूरोप के लिए नए आयाम तय कर पाएं।
लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन जनमत संग्रह के दौरान उस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत थे जो इस पक्ष में था कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ छोड़ देना चाहिए। जनमत संग्रह के नतीजे भी इसी अभियान के पक्ष में आए, लेकिन अब नाटकीय घटनाक्रम में बोरिस जॉनसन ने सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की कमान संभालने और प्रधानमंत्री की रेस से खुद को बाहर कर लिया है। उन्होंने इन पदों के लिए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। नामांकन की समय सीमा खत्म हो गई है। खबरों के मुताबिक ईयू छोड़ने के अभियान का हिस्सा रहे और जॉनसन के साथी माइकल गोव ने अप्रत्याशित घोषणा की कि वे इन पदों के लिए चुनाव लड़ेंगे। माइकल गोव ने कहा कि वे झिझक के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जॉनसन इस कार्य के योग्य नहीं हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के दूसरे धड़े जो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में रहने का हिमायती था की नेता और गृह मंत्री थेरेसा मे ने कहा है कि वो एकता के उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई हैं। मे ने जोर देकर कहा कि जनमत संग्रह के नतीजे अंतिम हैं और अब इनमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। मे ने कहा कि ईयू छोड़ने के लिए वार्ता इस साल के आखिर से पहले नहीं शुरू होगी। साइमन अशरवुड ब्रिटेन में चेंजिंग यूरोप प्रोग्राम के एक वरिष्ठ फेलो हैं। ये एक स्वतंत्र समूह है जो यूरोपीय संघ के मुद्दों को बेहतर तरीके से समझने में लोगों की मदद कर रहा है। अशरवुड कहते हैं कि भविष्य में ईयू के साथ ब्रिटेन के संबंध स्विट्जरलैंड के मॉडल जैसे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ब्रसेल्स को पहले ये विकल्प उपलब्ध कराना होगा।
The big advantage of the Swiss model is that it indicates the possibility of an agreement that is specific for a country.
स्विस मॉडल का बड़ा लाभ यह है कि इससे एक देश के लिए विशिष्ट समझौते की संभावना का पता चलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि इस प्रक्रिया में यूरोपीय संघ ही सभी शर्तों को तय करता है। ब्रिटेन ये नहीं कह सकता कि हमें ये शर्त पसंद है या हमें वो चाहिए। ऐसा होगा कि यूरोपीय संघ कहेगा कि आपको देने के लिए हमने ये तय किया है, आपको ये मंजूर है या नहीं।
फ्रांस के विदेश मंत्री मिशेल सेपिन ने कहा है कि यूरोपीय संघ छोड़ने का ब्रिटेन का फैसला ब्रिटेन के लिए आर्थिक तबाही लेकर आएगा। सेपिन ने फ्रांस के रेडियो क्लासिक से बात करते हुए कहा कि इस फैसले से यूरोपीय संघ के देशों में विकास की रफ्तार धीमी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेपिन ने कहा कि यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन को ही होगा।
तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव में सबसे प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे बोरिस जॉनसन ने खुद को इस दौड़ से अलग कर लिया है। और अब आपकी राय।
नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मैं हूँ स्वाति बख्शी।
स्वाति बख्शी मेरे साथ हैं। स्वाति के साथ बहुत सारी चिट्ठियां हैं आपकी, गुदगुदाती, हंसाती, कई बार थोड़ा सा नाराजी भरी चिट्ठियां, पोस्टकार्ड्स, ईमेल सब लेके बैठी हुई हैं और चारों तरफ बिखेर दिए हैं आपने सब चिट्ठियां, पोस्टकार्ड्स। बताइए कहाँ से शुरू कर रही हैं।
मैं शुरू कर रही हूँ एक चिट्ठी जो हमारी नई श्रोता, मुझे लगता है, इन्होंने भेजी है। श्वेता कुमारी ने लिखा है, बुकनारी पोस्ट पुनाकला थाना परैया जिला गया बिहार से।
गया से, अच्छा, ये चिट्ठी लिखी है। मैं देख रहा हूं, बहुत सुंदर सी इनकी लेख है।
और कह रही हैं कि मैं एक सरकारी टीचर हूं और आपके कार्यक्रमों से बहुत ज्ञान अर्जित करती हूं। इनका कहना है कि इनके पति की चिट्ठी पहले पढ़ी गई थी, शायद उसी से प्रेरित
हो गई है।
इन्होंने लिखा है और ये कह रही है कि मैं अपने विद्यालय में विषय से संबंधित जो पाठ होते हैं उनमें बीबीसी से लिए गए ज्ञान को अपने विद्यार्थियों से बांटती हूँ। और ये कह रही हैं कि जो भी नई जानकारियाँ हासिल करती हैं उसको एक नोटबुक में लिखती हैं जो स्कूल जाकर उनसे साझा करती
हैं। ये कितनी सुंदर बात है। मैं चिट्ठी देख सकता हूँ क्या ये?
जी हाँ,
ये चिट्ठी मेरे हाथ में है। और जी, ये आगे लिखती हैं कि हम पंचतंत्र की बात ही कर रही हैं। किस पंचतंत्र की बात कर रही हैं? हम लोग पंचतंत्र जिसमें दो लड़कियां, एक लड़का एवं मेरे पति और मैं एक साथ मिलकर प्रोग्राम सुनते हैं। अच्छा, उस पंचतंत्र की बात कर रही हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखी है आपने। जो हमारे कार्यक्रमों से आपको जानकारी मिलती है अपने छात्रों छात्राओं में, उसको आप प्रसारित करती हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उनको ये भी बताएं कि वो खुद भी बीबीसी हिंदी रेडियो सुनें और अपनी प्रतिक्रिया हमें चिट्ठी से भेजें। अपने छात्र छात्राओं को भी आप बताइएगा जो उनमें से बड़े हैं, समझदार हैं। धन्यवाद।
निखिल रंजन की तारीफ कई सारी चिट्ठियों में है, तो पोस्टकार्ड्स हैं। असद अली का है, जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से। और जो हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, उनका भी खत है। इन्होंने भी कहा है कि निखिल रंजन की आवाज़ इन्हें बहुत पसंद है। और एक चिट्ठी अशोक कुमार ठाकुर की है, मालीटोल अदलपुर दरभंगा बिहार से। इन्होंने लिखा है कि जो उन्होंने दुनिया जहान पेश किया था मैक्सिको में ड्रग की समस्या पर, वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया है।
जी हाँ, कुछ हफ्ते पहले वो प्रसारित किया गया था। निखिल को अभी थोड़ी देर पहले ये चिट्ठी मैंने दिखा दी है, तो उनका कहना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये चिट्ठी भान सिंह केवट की है, ढिमरपुरा पोस्ट कुंडार तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से मध्य प्रदेश से इन्होंने लिखा है। कह रहे हैं कि बुंदेलखंड में पिछले 3 बरस से लगातार सूखा पड़ रहा है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। पशु पक्षी और मनुष्य जो है वो भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि बीबीसी के संवाददाता बुंदेलखंड का दौरा करें और यहाँ के लोगों की पीड़ा कष्ट और वेदना को बाकी लोगों तक पहुंचाएं। मेरे ख्याल से
अगर ये हमारे कार्यक्रम गौर से सुनते रहे हों तो हमारे संवाददाता समीर आत्मज मिश्र बुंदेलखंड के दौरे पे गए थे, वहाँ से बहुत सारी खबरें उन्होंने की थी जब बिल्कुल सूखा वहाँ चरम पर था। अब तो मॉनसून आएगा तो उसके बाद शायद स्थितियाँ थोड़ी बदलेंगी, लेकिन ये खबरें हमने की हैं। ईमेल्स में देख
रहा हूँ, मैं ईमेल्स ले रही हूँ। अब कैलाश पंचल ने ईमेल लिखा है नगड़ा मध्य प्रदेश से, और इनका कहना यह है कि बीबीसी हिंदी काफी समय से बहुत दिलचस्पी के साथ ये सुनते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें किसी और टीवी चैनल का रुख नहीं करना पड़ता है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि पिछले कुछ समय से बीबीसी हिंदी भी जो है वो खुद को सेक्युलर रेडियो यानी धर्मनिरपेक्ष रेडियो साबित करने की दौड़ में शामिल हो गया है। कुछ हमारे जो प्रस्तोता हैं उनका इन्होंने जिक्र किया है, हमारे संवाददाताओं का इकबाल अहमद का इन्होंने नाम लिखा है। कहना है कि वो ज्यादा उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं शुद्ध हिंदी की बजाय, जैसे कि रिहान फजल या बाकी लोग करते हैं। अगर हमें उर्दू ही सुननी हो, उर्दू भाषा ही सुननी हो, तो फिर हम उर्दू सर्विस सुनेंगे आपकी जगह पर। मेरी गुजारिश है कि सिर्फ शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, हालांकि चिट्ठी इन्होंने अंग्रेजी
में लिखी है। तो पंचाल साहब, आपकी जो ये राय है ये तो हमने प्रसारित कर दी है। जहां तक बात सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष होने का है, तो हाँ, हम किसी धर्म का न तो पक्ष लेते हैं न उसकी मुखालफत करते हैं या विरोध करते हैं, इस लिहाज से हम धर्मनिरपेक्ष हैं और धर्मों पर हमारा कोई नज़रिया नहीं है। हम सिर्फ खबरें देते हैं, समाचार देते हैं और जैसा समाज में दिखता है उसको उसी तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं। रही बात भाषा की, उर्दू में हमारा ट्रांसमिशन नहीं होता है, लेकिन जो हिंदुस्तानी भाषा है, हिंदुस्तानी ज़बान है, जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम संस्कृत निष्ठ भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मैंने इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल किया तो वो भी बहुत, आप भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं,
और रेडियो सुन के नए शब्द सीखे जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने चिट्ठी लिखी और लिखते रहिएगा, ये मेरी गुजारिश है। बहरहाल मुझे लगता है कि अब समय है नहीं, तो अपने श्रोताओं से आप और हम दोनों इजाजत लें। उनको मैं चलते चलते पता बता देता हूँ, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और ईमेल भेजें hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
आपने अपनी चिट्ठियां सुन ली और अब खेल समाचार भी सुन लेते हैं। आदेश कुमार गुप्त मौजूद हैं। आदेश, क्या चल रहा है खेल में?
जी देखिए, अगर विंबलडन की बात की जाए तो उसके मुकाबले आज वो पूरे होंगे जो कल बारिश की वजह से थम गए थे, लेकिन उससे पहले आज सबकी नज़र रहेगी यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट पर, जहां क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू होंगे। और आज पहला ही क्वार्टर फाइनल 2004 के रन अप पुर्तगाल और पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची पोलैंड के बीच खेला जाएगा, और पुर्तगाल की टीम देखेगी क्या उसके स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और क्या वो अपने गोल के दम पर अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा पाते हैं। हालांकि जो पुर्तगाल के दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी पूरा दम लगाएंगे। दरअसल पोलैंड की टीम का डिफेंस बहुत ही दमदार है और उसे भेदना इतना आसान नहीं है, और मजबूत डिफेंस के दम पर ही पहली बार पोलैंड की टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उधर कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज मिश्रित युगल में मनु अत्री और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी हिस्सा लेगी, जबकि पुरुष एकल वर्ग में बी साई प्रणीत, आरंभी गुरुसाईदत्त और एचएस प्रणय अपना दमखम दिखाएंगे। तो जल्दी से बता दें कि विंबलडन में अभी तक जो परिणाम आया उसके अनुसार यूक्रेन के अलेक्जेंडर डोलोपोलो अमेरिका के डैनियल इवान से 7-6, 6-4, 6-1 से, और थाईलैंड के लुक्सिका कुमारकुम स्विट्जरलैंड के टीमिया बेस्किनेस्की से 6-4, 6-2 से हार गए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले कि कार्यक्रम हम आपसे विदा लें, एक बड़ी ब्रेकिंग खबर लेकर निखिल रंजन मौजूद हैं। निखिल, खबर बताइए।
बीबीसी समाचार, अभी खबर आई है कि वाशिंगटन में अमरीकी एयरबेस को बंद कर दिया गया है। वहां एक बंदूकधारी के घुसने की बात पता चली है। एंड्रयू एंड मैरीलैंड एयरबेस ने सोशल मीडिया के जरिए चेतावनी जारी की है कि लोग घर से बाहर ना निकले। साथ ही ये भी कहा है कि सैन्य अस्पताल में उठे एक मामले को काबू में कर लिया गया है और जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।
तो अगले कार्यक्रम में, यानी कि घटना चक्र कार्यक्रम में, जब आपसे मुलाकात होगी तो इस खबर के बारे में हम आपको और जानकारी देंगे। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दें। नमस्कार।